ॐ सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कल ज्ञान और कर्म के विषय में चर्चा चल रही थी। स्थूल रूप से कर्म का प्रादुर्भाव हृदय में वर्णन किया था, क्योंकि जहां प्राण का कंपन और धड़कन होती है हृदय में, इसको ही स्थूल शरीर का हृदय का भाग माना गया है। और वैसे सूक्ष्म शरीर का भाग जो हृदय का यहाँ बीच में होता है, ये और ये यहाँ होता है इसके नीचे, तो क्योंकि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में कुछ अंतर होता है, तो इसलिए कर्म का प्रादुर्भाव प्रधान रूप से सबकी समझ में आ जाता है। हृदय की धड़कन हाथ से भी देख लेते हैं, मशीन से भी देख लेते हैं, अपने आप भी सुनाई देती है जिनका हार्ट ज्यादा वर्क करता है। अब रही ज्ञान की बात, ज्ञान का प्रादुर्भाव यहां मानते हैं, क्योंकि यहां ऐसी ज्ञानों का अधिक प्रादुर्भाव देखने में आता है जो इंद्रिय संबंधी विज्ञान है, क्योंकि दसों इंद्रियों के सेंटर इस मस्तिष्क में है और दस नहीं बल्कि 20 सेंटर हैं इसमें, 10 स्थूल शरीर के और 10 सूक्ष्म शरीर के, तो 20 सेंटर यहाँ इंद्रियों के हैं और 20 इंद्रिय यहाँ काम कर रही हैं। इंद्रियों के तो विभाग हो गए हैं, मन बुद्धि दोनों के समान रहते हैं, क्योंकि ये मन बुद्धि जो हैं, ये सूक्ष्म शरीर के विभाग हैं। भौतिक विज्ञानवादी इन मन इंद्रियों को इस स्थूल शरीर की ही उपज मानते हैं। इसके अंदर यहाँ खास प्रश्न, इस भाग में कुछ ऐसा स्थान है खाइए सी, तो वहां कुछ संवेदन आत्मक स्मरण होता है, तो वहां अगर यंत्र आदि लगाया जाता है तो स्मरण स्मृति सी जागने लगती है। तो क्योंकि ये तो सूक्ष्म शरीर नाम की और कोई चीज मानते ही नहीं, प्रत्यक्षवादी है, इससे भिन्न और कोई शरीर है ही नहीं, तो ये लोग तो कहते हैं कि बुद्धि और मन का सेंटर भी यहाँ ही है। मन की तो बात ये नहीं कहते, बुद्धि का जहाँ संवेदन होता है, स्मरण होता है, उसकी बात कहते हैं, पर हम मन और बुद्धि को अलग मानते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है समाधि की कि जैसे हम परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो परमात्मा इंद्रियों का तो विषय है नहीं, तब हम उसको मन और बुद्धि का विषय बनाते हैं। बुद्धि अकेली काम नहीं करती है जब तक उसके साथ मन सहयोगी नहीं होगा, और मन सहयोगी सदा रहता है, क्योंकि ज्ञान और कर्म का संबंध रहना चाहिए। मन कर्म प्रधान है और बुद्धि ज्ञान प्रधान है। मन की उत्पत्ति अहंकार से है और बुद्धि की उत्पत्ति महतत्व से है। महतत्व ज्ञान प्रधान है और अहंकार कर्म प्रधान है। तो अब इन दोनों का संबंध यहाँ रहता है ज्ञान की, जिस वक्त हम परमात्मा को लक्ष्य बना करके चिंतन करते हैं, उसका ध्यान आदि करते हैं, उस वक्त रूप आदि इंद्रियों के विषय की बात कोई नहीं होती। अब हम उसकी खोज में लगते हैं कि कैसा ये ब्रह्म है, कैसा ये परमात्मा है, तो उस वक्त बहुत हम गहराई से अवस्था में जाते हैं, तो मन साथ उसके चिपका हुआ सहयोगी सा उसके ऑटोमेटिक कर्म से करता रहता, उतने क्षेत्र में बुद्धि के क्षेत्र में उसके साथ मिला हुआ, तो ये दोनों मिलकर के चिंतन करते रहते। ऐसा भी संभव हो जाता है समाधि की अवस्था में, एकदम व्युत्थान हो जाता है, तो मन फिर इंद्रियों को जागृत सा कर देता है। इंद्रिय समाधि की अवस्था में, गहन समाधि की अवस्था में प्रसुप्त हो जाती, मूर्छित सी हो जाती है, काम करने में असमर्थ हो जाती है। केवल मन और बुद्धि चिंतन रूप व्यवहार किया करते, ज्ञान रूप व्यवहार किया करते, मनन रूप व्यवहार किया करते, निर्णयात्मक व्यवहार किया करते, दोनों करते रहते हैं। तो अकेला कोई कर्म नहीं करता है, हमें हमेशा कर्म की उत्पत्ति संयोग से होती है। दो वस्तु का जहाँ संयोग होगा वहाँ ही कर्म की उत्पत्ति होगी, अकेले में गतिविधि या कर्म की उत्पत्ति नहीं होगी। वहाँ आदि सृष्टि में जब प्रकृति और ब्रह्म ही होते हैं, कुछ नहीं होता, वहां भी दो का संयोग ही कर्म की उत्पत्ति का हेतु होता है, और वहां कर्म का प्रादुर्भाव प्रकृति में होता है, नहीं कर्म में होता है। यहाँ इस मस्तिष्क में भी जब हम चिंतन रूप व्यवहार करते हैं, कोई सूक्ष्म निर्णय आत्मा और परमात्मा के विषय में करते हैं, तो तब यहाँ भी दो वस्तु का संयोग होता है, मन और बुद्धि का, तब यहाँ ज्ञान की उपज होती है या कर्म की उपज होती है। बुद्धि ज्ञान को प्रकट करती है और मन साथ में कर्म को प्रकट करता है, अकेले ज्ञान में गति नहीं है, कर्म कुछ उसके साथ सदा रहता ही है, छाया की तरह रहता है। जैसे पुरुष की छाया उससे अलग नहीं होती, ऐसे मन सदा संयुक्त रहता है। इसी प्रकार प्रकृति भी ब्रह्म के साथ सदा संयुक्त नित्य संयोग है, और ये अनित्य संयोग है, क्योंकि शरीर अनित्य है, प्रकृति और ब्रह्म नित्य है। तो ये एक प्रकार से यहाँ प्रकृति के ही कार्य है। अब ये जो हिंदू लोग या दूसरे मुसलमान भाई हैं, दूसरे भाई हैं, जब इन्होंने ग्रंथ आदि लिखे, जैसे वेद आदि लिखे गए, अब ये वैदिक लोग तो कहते हैं कि भगवान नहीं वेद का निर्माण किया है, जैसे और सृष्टि का उसने निर्माण किया है, ऐसे ही मंत्र भी भगवान ने घर घर करके और ला करके रख दिए हैं, या ऋषियों के मुनियों के हृदय में दे दिए हैं। अब शंका होती है कि जैसे जो कर्म जिस वक्त इन भूतों का प्रारंभ हुआ, ये भूत सृष्टि बने, पृथ्वी तक उत्पन्न होने में कोई किसी प्रकार के ऐसे विज्ञान की बात उत्पन्न नहीं हुई थी, क्योंकि स्थूल शरीर नहीं थे। इस प्रकार का ये वर्तमान हमारा आपका व्यवहार आत्मज्ञान चल रहा है, किसी भी प्रकार का ज्ञान चल रहा है, इस प्रकार का स्थूल रूप कोई ज्ञान नहीं था। तो जब ये कभी मानवीय सृष्टि पहले चली है, वेद आदि के विषय में ये कहते हैं कि इल्हाम हुआ है, मोहम्मद साहब को इल्हाम हुआ है, फलाने को इल्हाम हुआ है, ये इल्हाम की बात भगवान आन करके पिचकारी लगा के इनके अंदर इल्हाम देता है, लो भरो तुम। क्यों भगवान से तुम इल्हाम लेते हो? जिस प्रकार की चेतन सत्ता तुम भगवान को मानते हो, वह चेतन सत्ता तुम्हारे शरीर में जीवात्मा के रूप में भी तो है, वह तुम्हें क्यों नहीं इल्हाम दे देगी? तुम जो दूसरे, जब तुम्हारे पास कोई चीज है, तुम्हारे पास 100 रुपया तुम्हें जरूरत है, तुम दूसरे से क्यों मांगते करोगे, तुम रुपए को बरतोगे? तो फिर इसका कर्म और व्यापार क्या हो जाएगा? अगर भगवान ही सब कुछ दिया करेगा तो फिर ठीक है, भगवान जीव आत्मा की कोई जरूरत नहीं, हम तो फिर मिट्टी के माध्यम ही रह जाएंगे, हमारा कोई काम नहीं, भगवान ही सब कुछ करा करेगा, और भगवान ही भोगता, भगवान ही करता, जीव नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो इसलिए करोड़ों वर्षों के बाद अब तुम यहां जैसे छोटे छोटे बच्चों को तुम हजारों को छोड़ दो जंगल में ले जाकर के, कोई टीचर कोई माता पिता उनका ना हो, ये एक्सपेरिमेंट ही तो प्रत्यक्ष बात है, इसमें तजर्बा करके देख लो, तुम 50 बच्चों को एक ऐसे स्थान में छोड़ दो कि जहां कोई बोल चाल आदि के जरिए उनको कोई किसी प्रकार का विज्ञान ना सिखा, ऑटोमेटिक जो उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत विकास ऐसे कुछ करने चलाने लगेंगे, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता उनमें बोली का विकास होगा, कुछ आपस में संकेतों से थोड़ा थोड़ा विज्ञान का, जैसे पशुओं में होता है, ऐसे उनमें भी थोड़ा थोड़ा ध्यान का विकास होने लगेगा, क्योंकि अंग प्रत्यंग आदि पशुओं से भिन्न है। अगर तुम पशुओं के ही झुंड में उसको छोड़ दो, जैसे अजमेर में एक भेड़िया एक बच्चे को उठा ले गया था, कई साल बच्चा उनके साथ रहा, 5-7 साल, और उनकी तरह चलता था, उनकी तरह झपटा मारता था, उनकी तरह हमला करता था पशुओं पर, खाने पीने के लिए सब चेष्टाएं भेड़ियों की तरह। जब उसको वहां शहर में लाया गया, उसकी वो आदतें गई, वैसे वो सब काम करता था, आखिर को 2-3 साल में वो मर ही गया। पुरुषत्व की, पुरुषों के विज्ञान की बात उसमें नहीं आई। तो इसी प्रकार शनि शनि ये विज्ञान का विकास होने लगा, जो आदि सृष्टि में मानवों की सृष्टि हुई थी कि मानव ही एक ऐसा जीव है ये सब जीवों में जिसमें बुद्धि का विकास अधिक होता है। सामान्य और विशेष दो प्रकार का इसमें विज्ञान रहता है, और जितने पशु होते हैं उनमें केवल सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का भी कुछ विकास हुआ करता है, विशेष ज्ञान का भी विकास होता है, पर सामान्य ज्ञान का विकास इस मनुष्य के विज्ञान की तरह नहीं होता। पशुओं में भी बहुत कुछ बुद्धि आदि कुछ होती है, पर सामान्य ज्ञान की होती है। तो उनमें उन पुरुषों में आदि सृष्टि में परस्पर व्यवहार में जो जंगल में पैदा हुए थे, यहाँ 10-50 बच्चों को जंगल में रख कर देख लो, एक बड़ी भारी दीवार लगा दो, कुछ ना खाने पीने का वहां कुछ रख दो, अपने आप ही उपड़ा चलने लगेंगे, अपने आप ही हरकतें शुरू करने लगेंगे, अपने आप फूक फूक करने लगेंगे पशु पशु आदि की तरह। तो यहाँ क्यों नहीं वो विकास होता, यहाँ क्यों नहीं? तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता विकास चला, और फिर पुरुष कुछ जरा समझवाने लगे, बुद्धि वाले हुए, कुछ भाषाएं बनने लगी। अब इतनी भाषाएं बनी हुई है संसार के अंदर, हजारों भाषाएं हैं, इन सबको क्या भगवान बनाने आया? एक तुम्हारी संस्कृत भाषा को और वेद के मंत्रों को ही भगवान ने बना दिया, और भाषा भगवान क्यों बना देता, और भी बना देता, एक ही ये क्यों बनाई? जब मनुष्य और अनेक भाषाओं को बना सकते हैं, तो संस्कृत भाषा को भी तो मनुष्य बना सकते थे या बनाई थी। तो ये भी एक थ्योरी गलत सी साबित होती है कि भगवान से ही ये, जैसे मोहम्मद साहब को आयतें आई, और से कहते हैं मुझे मंत्र आए, हमें तो भगवान की तरफ से कोई हाँ नहीं होता, हमारी बुद्धि रोज चिंतन करती है, हमारे आत्मा का इसमें सहयोग है, बुद्धि का ही विकास है, इसी में ये सारी उपजे हैं, भगवान की कोई देवी नहीं है। हमारा भी तो पुरुषार्थ है, हमारा भी तो प्रयत्न है। अब तुम आन के यहाँ जंगल में बैठ बैठ के सूख सूख करके साधना कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, भगवान ही बैठे हुए वहां घोट घोट करके तुम्हें पिला देता, तो तुम्हारा पुरुषार्थ है, प्रयत्न है, कर्म कर रहे हो, कर्म का फल मिलना है, उद्देश्य है, लक्ष्य बनाया है, जिस लक्ष्य के लिए चले हुए हो, कर्म कर रहे हो, उसकी भी तो उपलब्धि, उसके कर्म जो यहाँ तप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, खाने का अभाव, रहने का अभाव, सब चीजों का अभाव यहाँ देखते हो, फिर भी ठहरे हुए किसी विशेष उपलब्धि के लिए। तो ये इस प्रकार का तपस्वी जीवन कर करके बुद्धि का विकास होगा। तो सुनते सुनते इतने वर्ष मेरे भी उपदेश सुनते हुए, मैं तो कहीं सुनने नहीं जाता, मैं किसी बहुत वर्षों से शायद मैं लेक्चर में किसी के नहीं जाता, और अब तो पुस्तकें भी पढ़नी छोड़ दी, पुस्तकें भी नहीं पढ़ता वर्षों से। तो ये अब बुद्धि का विकास जो है, अपनी बुद्धि का भी, क्योंकि विकास रूप धर्म तो इसमें है, परमात्मा के अंदर हम आत्मा के अंदर भी ज्ञान का विकास समझ नहीं आता, परमात्मा के अंदर भी ज्ञान का विकास समझ नहीं आता। अगर ये इनका कोई ज्ञान है तो वो तो एक समान ही सदा रहेगा, उसमें कोई ह्रास और वृद्धि नहीं होगी। ह्रास और वृद्धि वहां होती है जिसमें परिणाम प्रारंभ होता है, परिवर्तन प्रारंभ होता है, जिसमें गति प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार का परिणाम, इस प्रकार का परिवर्तन, इस प्रकार की गति न आत्मा में देखने में आ रही है, न परमात्मा। तो ये सब सारा विस्तार जो है ये प्रकृति का, हाँ सन्निधान उसका है, आत्मा का सन्निधान है। अगर आत्मा के ही ये गुण धर्म मान लिए जाएं, तब अंतःकरण के क्या धर्म होंगे? तो फिर जिन लोगों ने आत्मा के ये 24-25 आदि गुण मान लिए हैं, वास्तविक में आत्मा के स्वरूप को न समझ करके वो चित्त को ही आत्मा मान समझ बैठे, या बुद्धि को ही आत्मा मान बैठे समझ बैठे, ज्ञान का कोई अंत तो नहीं है, कोई मैंने ही तो ठेका नहीं ले लिया या किसी और ने तो ठेका नहीं ले लिया, तो इसलिए ये चित्त को ही, क्योंकि अब चित्त की तो तुम वृत्ति निरोध करने जा रहे हो और आत्मा की स्वरूप में स्थिति करने जा रहे हो, तो जिसकी वृत्ति निरुद्ध होंगी स्वरूप में तो स्थिति चित्त की होनी चाहिए, नहीं कि आत्मा की। आत्मा तो जैसा पहले था, या तो तुम आत्मा को विकारी मान लो, चित्त की तरह विकारवाद मान लो, तो फिर आत्मा की वृत्ति वो क्यों नहीं कहती, चित्त की वृत्ति क्यों कह रहे हो? जब तुम ज्ञानकार वृत्तियों का प्रादुर्भाव आत्मा में मान रहे हो, फिर चित्त को क्यों लेते हो? चित्त की वृत्तियों का निरोध क्यों पातंजल करता, आत्मा की वृत्तियों का निरोध क्यों नहीं करता? और थोड़ा थोड़ा ये भी, दृष्टा दृष्टि मात्रा शुद्धोपि प्रत्यानुपश्या, इन्होंने एक सूत्र दिया है पश्य, देखने का, वहां देखने का तात्पर्य ये है कि एक प्रकार से साक्षी रूप से आत्मा वर्तमान है, नहीं कि देखने से उसमें कोई किसी प्रकार का विकार या वृत्ति होती है। जैसे परमात्मा को भी दृष्टा कह दिया है, तो दृष्टा का तो मतलब ये है वहां उसकी सत्ता मौजूद है, उसकी सत्ता में ये सब कार्य हो रहा, उसकी स्थिति में ये कार्य हो रहा, दृष्टा की तरह, ऐसे नहीं जैसे मेरी आंखें इनको देख रही है, आंखें भिन्न भिन्न इनके चेहरे को, मूंछों को, बालों को सब भिन्न भिन्न रूप से प्रकट कर रही है। अगर दृष्टा ही वहां भिन्न भिन्न रूप से विज्ञान को प्रकट कर रहा है, तो चित्त में और दृष्टा में क्या अंतर हुआ? फिर क्यों नहीं दृष्टा की ही वृत्तियां वो कह दी? अगर दृष्टा के अंदर वृत्तियों का कोई प्रभाव पड़ता है, तब उसको विकारवान मानना पड़ेगा, तो फिर चित्त में और दृष्टा में कोई अंतर नहीं रहेगा। वृत्तियां तुम चित्त की मान रहे हो, आत्मा की स्वरूप में स्थिति मान रहे हो। हाँ, अब ये जो हम कहते हैं मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, अपने लिए मैं आदि, ये सब भ्रांति है, ये सब हमारी अज्ञानता है। हम तो भगवान को भी कहने लगे भगवान भी दृष्टा है, भगवान भी कर्म करता है, भगवान भी जो कर्म करेगा वहां भोग भी मानना पड़ेगा। अगर भगवान जीवात्मा को तो तुम कर्ता मानते हो, और भगवान को कर्ता मान करके उसको मुक्त क्यों मानते हो? उसको भी ऐसे ही मानो, जैसे ये बंधन में प्राप्त होता है, भगवान भी ऐसे संसार की रचना को कर करके क्यों नहीं बंधन में प्राप्त हो जाता? उसका बंधन क्यों नहीं मानते आप? जीवात्मा का छोटे से देश में छोटा आत्मा, इसको तो तुम बंध मानते हो, बड़े देश में इतना इसी के समान चेतन, बड़ा भारी चेतन परमात्मा बैठा सारे देश में, सारे ब्रह्मांड में, उसको तुम मुक्त मानते हो। तो ये सारी बातें कुछ युक्ति युक्त नहीं बैठती है, कुछ तर्क से सिद्ध नहीं होती है। मैं जब सृष्टि का सृजन हो रहा था, जैसे हम यहाँ कर्मों का निर्माण करते हैं, पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो हम एक देश में रहने वाले हैं, पदार्थ भी एक देश ही है। तो जिस वक्त सृष्टि का निर्माण हो रहा था, प्रकृति के सब देशों में परमात्मा की सत्ता मौजूद थी, तो इसलिए वहां एक देश में कर्तृत्व धर्म पैदा हुआ था। एक देशी जो पदार्थ होगा उसमें ही कर्तृत्व धर्म पैदा हुआ करता है, कर्म की उत्पत्ति होती है, क्योंकि जब कर्म का हम लक्षण करते हैं भगवान में उस कर्म को घटाएंगे, तो उत्क्षेपण अवक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमनम इति कर्माणि, ये पांच बातें बतलाएंगे। तो आदि सृष्टि जब प्रारंभ हो रही है, ये बातें वहां परमात्मा में तो घटती नहीं, उत्क्षेपण भी वहां नहीं घटता, अवक्षेपण भी वहां नहीं घटता, आकुंचन भी नहीं बढ़ता, प्रसारण भी वहां परमात्मा में नहीं होता, और गमन भी वहां नहीं होता, क्योंकि कोई देश खाली हो तो वहां चल के जाए वो। तो जब कोई ऐसा देश नहीं है, तो इसलिए कर्म का प्रादुर्भाव, कर्म की उत्पत्ति परमात्मा में नहीं, फिर कैसे वो सृष्टि का कर्ता हो सकता है? कहोगे सृष्टि बनी कैसे? संविधान तो उसका है। और सब देशों में जहां तुम जिस देश में कर्तृत्व धर्म पैदा करना चाहते हो वहां तो चेतन रूप से पहले ही वर्तमान है। वहां करना चाहते चाहोगे तो वहां भी वर्तमान है। जब सब देशों में सब स्थानों में प्रकृति के वो वर्तमान है तो वहां किसी धर्म विशेष की उत्पत्ति की करने की किसी देश विशेष में क्या आवश्यकता है? एक ही देश विशेष में जैसे इस शरीर में कर्म की उत्पत्ति होती है कि उछल भी सकता, कूद भी सकता, सुख भी सकता, चल सकता, इसमें तो ठीक है। परमात्मा में जब ये बातें ही नहीं है तो उसमें कर्तृत्व धर्म कैसे बनेगा? तो सृष्टि का निर्माण वो कैसे करेगा? जब सृष्टि का निर्माण वो कर्तृत्व रूप धर्म से नहीं तो तुम्हारे वेद की ऋचाओं को कैसे बना देगा वो? तो उस है, उसका तो केवल संनिधान है। अब भी उसके संनिधान से उसके गर्भ में सारे ब्रह्मांडों के पृथ्वी के गर्भ में भी वर्तमान है, हमारे गर्भ में भी वर्तमान है। तो पृथ्वी के गर्भ में रह करके भी वह पृथ्वी भी गतिशील, उसमें भी निर्माण आदि सारे कार्य हमारे शरीर की तरह पूरे, जैसे हमारे शरीर में सारी चीजें बन रही हैं, ऐसे ही पृथ्वी में भी बन रहे हैं, लोक लोकांतों में भी बन रही, क्योंकि उसकी सत्ता सर्वत्र एक समान है। ये तो पदार्थ भेद से, मैटर के भेद से इनमें भेद हो जाता, चेतन सत्ता में कोई भेद नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं, कोई तब्दील नहीं, कोई ह्रास नहीं, कोई विकास नहीं। तो इसलिए कर्तृत्व धर्म की तो बात उसमें बिल्कुल नहीं बनती। कर्तापन का धर्म एक देशी में हुआ करता है। और कर्तुर ईप्सितम कर्मा, कर्म का लक्षण अष्टाध्यायी ने किया है कि जो कर्ता को अभिष्ट होता, प्यारा होता, तो भगवान को तो कोई चीज प्यारी ही, क्योंकि उसका अंतःकरण ही हमारे तो अंतःकरण है, इसलिए हमें प्यार की बात बनेगी। तो भगवान चेतन सत्ता तो जब हम उसको निष्क्रिय मानते हैं, ये उसको निराकार भी कहते, साकार भी कहते, दो विरोधी धर्म है। उसको सगुण भी कहते, निर्गुण भी कहते, दयानंद ने जैसे सगुण और निर्गुण मान लिया है, दो विरोधी धर्म नहीं है, एक ही। चाहे तो उसको सगुण ही मानो, चाहे निर्गुण ही मानो। जब हम निर्गुण की व्याख्या करते जाएंगे तो सगुण का बिल्कुल ही खंडन होता चला जाएगा, और जब हम सगुण की व्याख्या करेंगे तो निर्गुण का खंडन ही होता चला गया, एक ही ठहरेगा। पता नहीं इन लोगों ने क्यों इतना महत्व दे दिया उनके विज्ञान को, उनकी बातों को, उनके ग्रंथों को, चल पड़ा ऐसे ही है, धांधली है संसार में। अब ये सब धांधली से इतने धर्म इकट्ठे हुए, अलग अलग बनते जा रहे हैं। कोई समय आ सकता है मेरे ग्रंथों को भी लेकर के कुछ 100, 50, 1000, 10, 20 लाख आदमी उसी को धर्म मान बैठे, ऐसे धर्म चल जाया करते हैं। मेरे विचारों को लोग ज्यादा फॉलो करने लगे, मेरा ही धर्म चल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये मंत्र आदि जो ऋचाएं आदि हैं, ये ऋषियों मुनियों की अपनी कृति है।
ये बात
जब जब विकास हुआ, जब भाषा का विकास हुआ और बढ़ती गई भाषा, क्योंकि जैसे अब वर्तमान में अंग्रेजी सार्वभौम भाषा से बनती जा रही है, बड़ा विकास हुआ। एक युग ऐसा रहा है, सबसे पहले जो वेद की भाषा थी वो बहुत कुछ संकुचित सी थी और उसका व्याकरण भी बहुत थोड़ा ही था। बाद में और भाषा का विकास हुआ, उसी का दूसरे रूप में जब ये उपनिषदों का काल आया, ब्राह्मणों का काल आया, फिर दर्शनों का काल आया, इसमें भाषा का विकास ज्यादा आया। तो ये भाषा कुछ दूसरे रूप में आ गई, एक वैदिक भाषा, एक लौकिक भाषा। उसको ये वैदिक भाषा जो मंत्र संबंधी भाषा सी है ना, जो शब्द उस टाइम के आते हैं, उस वक्त की वो कविता है, उस टाइम की, उस वक्त उस प्रकार की भाषा का, जटिल सी भाषा का विकास था पहले पहले। फिर उसके बाद ये दूसरी भाषा आई जिसमें दर्शन आदि ये ग्रंथ, ब्राह्मणों की भाषा, ग्रंथों की भाषा वेद काल के बीच की भाषा है। तीन भाषा हो जाती है, एक वेद की भाषा पहली, एक ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की भाषा, और एक तीसरी भाषा आ गई दर्शन काल की भाषा। तो इसमें आन करके व्याकरण का बहुत विकास हुआ। ये अष्टाध्यायी आदि, महाभाष्य आदि ये बाद के ही दर्शन काल के ही बने हैं, इसलिए इन्होंने व्याकरण के बहुत सूत्र बनाए, बहुत भाषा का विकास हुआ, बड़े बड़े इसके ऊपर ग्रंथ बन गए, ये भाषा समृद्ध हो गई और इस भाषा के द्वारा बहुत से काव्य आदि साहित्य आदि बहुत ग्रंथ लिखे गए। तो भाषाओं में भी कोई विकास और परिवर्तन होता चलता। ऐसे और देशों की भाषाएं हैं, तो भाषा भी ये मनुष्यों की ही बनी हुई है। परमात्मा ने कोई भाषा नहीं बनाई, परमात्मा ने कोई वेद के मंत्र ला ला के घर घर के नहीं रखे। अगर परमात्मा रखने वाला होता तो अब हाँ, परमात्मा की जो कृति है उसके जो अपने अपना जो कुछ उसका है, सब भूतों में सब प्राणियों में अंतर्यामी होकर के सबके लिए गति का हेतु बना हुआ है। बाकी अब गति का हेतु यानी एक गति कहते चलने को, चल के जाना, पर जब वो सब जगह यहाँ भी मौजूद है, 10 अरब मील पर भी मौजूद है, 10 खरब मील पर भी वो एक जैसा ही मौजूद है, तो उसको जाने आने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। वहां जहां जैसा वहां मैटर है, वहां उस प्रकार का कर्म उन मैटरों में पैदा होता रहेगा। इस भूमि में जैसा मैटर है इसमें वैसे कर्म होते रहेंगे, चंद्रमा में जैसा मैटर है उसमें वैसे कर्म होते रहेंगे। जैसे हमारे शरीरों के कुछ कुछ भिन्न भिन्न मैटर हैं, इनमें ज्ञान विज्ञान आदि शक्तियों के भिन्न भिन्न विकास होते रहते हैं। तो जैसा जैसा मैटर होता है, जैसा जैसा उपादान कारण और पदार्थ होता है, उसके वैसे वैसे गुण और धर्मों का विकास होता चला जाता है संसार में स्वयं अपने। तो ये इस प्रकार का जैसे हमारे मस्तिष्क में अभिज्ञान का विकास होता है, ठीक है। आचार्य लोग भी इसमें सहकारी हैं, उनकी भी बड़ी कृपा है। पर एक आदमी ने, जैसे किसी ने, आपने मुझे 100 रुपया दिया है, अब मैं 100 रुपया, एक तो आदमी ऐसा है, आपने, मैंने यहाँ इस 30-40 आदमियों को 100-100 रुपया बांटा। अब जैसे जैसे एक आदमी शराब पीने वाला है, वो तो जाके शराब ही पी लेगा 100 रुपये की। एक आदमी और कोई मिठाई जिसको कोई प्यारी है वो मिठाई जाके खा लेगा। एक आदमी को किसी और चीज प्यारी है वो होता है। एक आदमी समझदार बुद्धिमान है, उस 100 रुपये से व्यवहार करेगा, उसका 100 का 200 बढ़ा लेगा, 400 बढ़ा लेगा, 1000 बढ़ा लेगा, लाखों बढ़ा लेगा, 10 लाख। ये बुद्धिमानी की बात, उसने समझ से काम लिया, उसने उसका विकास किया, उसने बढ़ाया और उसने 2 शराब की बोतल ली ऐसे महात्मा ने और पी के खत्म कर दिया 100 रुपये। और उस 100 रुपये को उसकी पीढ़ियां चलेंगी उसके। तो ऐसे ही इसी प्रकार देखो, मुझे तो गुरु के पास रहने के लिए टाइम 1 महीना, तो उस वक्त बुद्धि का ज्यादा विकास नहीं था, छोटा बच्चा का ज्यादा है। दूसरा जो मिला 1 ही रात का, फिर मैं किसी विद्वान के पास सीखने पढ़ने में, तो मेरे मस्तिष्क का ही तो ये विकास है ना ग्रंथादि। अभी रोज तुम्हारे सामने रोज बातें करता हूँ, बोलता हूँ, बहुत बातें नई भी बतलाता हूँ, समझाता हूँ, तो ये इसी का तो विकास है। भगवान इनाम दे रहा मुझे, मैं तो भगवान को अकर्ता मानता हूँ, निष्क्रिय मानता हूँ। और जब अगर भगवान ही करता तो मेरा आत्मा भी तो बैठा ही है, क्यों नहीं मेरी मदद कर देगा। जब भगवान को तुम बुला के यहाँ कुछ कराना चाहते हो तो भगवान का दूसरा बेटा जो बैठा यही कर देगा, यहाँ भगवान की क्या जरूरत है। जय चेतनता कर्म शरीर आदि, जैसे मेरा ऐसे बाप का भी शरीर है, तो बाप के आने की क्या जरूरत है जब मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ये सब अपनी बुद्धि का ही विकास है। मानवों में ये जितने ग्रंथ रचे जाते बने जाते हैं, कोई समय आएगा, अब जैसे दयानंद को जूते भी मारा करते थे उस वक्त, अब उसके ग्रंथों को पूजते करते, उनका प्रचार करते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है जो हमारे ग्रंथों का भी प्रचार हो जाए, इनका विकास हो जाए, इनका भी ज्यादा। तो ये इस तरह परंपरा चलती रहती है, विज्ञानों की, विज्ञान की परंपरा चलती है अंतःकरणों में। अंतःकरणों में विकास होता है। भगवान का कोई अंतःकरण नहीं है। अगर उसका अंतःकरण मानोगे तो उसका शरीर भी, ये सारा ब्रह्मांड उसका शरीर, मान लिया कि नहीं, किन्नी आचार्य ने, ये ब्रह्मांड ही उसका शरीर है। तो इसलिए, क्योंकि ये तो एक देशी है, इसमें उत्पत्ति विनाश देखते हैं, हमने पैदा की, हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया, यहाँ तो बुद्धि का विज्ञान का विकास चल रहा है। परमात्मा में कोई ऐसी बात नहीं। तो ये जब अंतःकरणों के, अच्छा माना प्रकृति में ही जो मैं तत्व था वो भगवान का अंतःकरण मान लो, पर जैसे हम अपने आप को विकारी मानते हैं, हम मूर्ख और ज्ञानी अज्ञानी मानते हैं, अनभिज्ञ मानते, फिर भगवान को भी वैसा मानना पड़ेगा, फिर एक और ऐसा उसके ऊपर भगवान मानना पड़ेगा जो विशुद्ध हो, जिसमें कोई विकार ना हो, कोई आपत्ति ना हो। जब यहाँ थोड़ा चेतन एक वर्तमान है, हम इसको अपने आप को विकारवान मान के बैठते हैं, तो बड़ा आदमी के अंदर तो बड़े ही विकार मानने पड़ेंगे, भगवान के अंदर तो अनंत ही विकार मानने पड़ेंगे फिर। तो इसलिए भगवान की तो बात हम भगवान से मुनकिर नहीं होते, सिर्फ कर्म का भेद है। तुम कहते हो सब कुछ भगवान ही करता है, हम कुछ ही नहीं करते। भगवान आके मेरी रोटी भी पका दिया करे, नौकर की भी जरूरत ना रहे, भगवान मेरा पानी भी भर दिया करे, भगवान मेरी झाड़ू भी लगा दिया करे, सब भगवान ही कर दिया करेगा, मुझे कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बुद्धि का विकास करो। लोग जो कहते हैं उनको कुरान में आयतों का इल्हाम हुआ, इनको क्या नाम भगवान ने ऋचाएं फेंक दी, पहले ही चली जाती, कहते ऋचाएं वैसे चली जाती वैसे ही आ जाती। तो ये भाषा का विकास है, भाषा की। आजकल जैसे दूसरी भाषाओं में भी तो कविता बनती है, तो ये उस वक्त की संस्कृत की कविता है, उस वक्त का विज्ञान है। कोई वो संपूर्ण विज्ञान उन मंत्रों में ही भरा हुआ हो, ये भी गलत बात है। इतनी पुस्तकों में संसार का अनंत विज्ञान कैसे आ सकता है? ये तो अब छोटी पुस्तक में, इतनी पुस्तक तो रट करके एक आदमी जो बुद्धि जिनकी तीव्र होती है, स्मृति ज्यादा होती है, दस पांच महीने में याद करके छोड़ देगा। तो ये जो निरंतर नए विज्ञान का विकास है, ये इन मस्तिष्कों में चलता है। और जो तुम भगवान को बुला करके कराना चाहते हो, चेतन जीव आत्मा यहाँ भी बैठा है, ये उसकी मदद करता रहेगा जिसमें विकास हो रहा है। तो बुद्धि में विज्ञान का विकास हो रहा है, ये तुम्हारा मस्तिष्क विज्ञान का केंद्र है। तो इसमें आत्मा की आपने खोज करनी है। मैं कह रहा था बुद्धि और मन जो है, जिस वक्त आप गहन सी समाधि की अवस्था में जाते हो, जहां रूप आदि की बात, एक अवस्था ऐसी भी आ जाती है, ये आपको कभी पक्का ध्यान नहीं रहता कि चित्त में कारण शरीर में अवस्था किस वक्त होती है। ये भेद अगर आपको समझ में आ जाए कि कारण शरीर की जिस वक्त अहम अस्मी का बोध हो रहा होता और कुछ बोध ना हो, या अयम अस्थि ये है सामने में देख रहा और कुछ नहीं है, वहां रंग रूप आदि आकार प्रकार की नहीं। दो अवस्थाओं में अगर तुम्हारी ऐसी सूक्ष्म सी समाधि बन जाए, तो वो कारण शरीर में वो विज्ञान होगा, अहम अस्मी का ये मैं हूं, या त्वम असी ये भगवान है। अगर अपने से उसको अलग ही सिद्ध करना चाहते हो, अलग ही देखना चाहते हो, पर उस वक्त फिर ये निर्णय करना पड़ेगा कि ये भगवान पास में बैठा और ये मैं बैठा हूं, मेरी भी चेतनता ऐसी है और वहां भी चेतनता है। चेतनता में दोनों को समान माना है, सारे भेदवादियों ने। जब ये बीच का पर्दा अगर चित्त का हट जाता है, तो उनको दोनों को अलग करने वाली कौन सी चीज होगी? चेतन चेतन। यहाँ पानी भरा हुआ इस हौज में भी, इस हौज में, और एक फट्टा रखा हुआ है, दोनों तरफ पानी है, फट्टे को उठा दिया जाए तो वहां दोनों पानी का भेद करने वाला, एक दूसरे से अलग करने वाला कौन सा रहेगा? अगर चित रूपी पर्दा बीच में चित को ही, तो तुम चित के देश में तो आत्मा की स्थिति मानते हो और चित के बाहर परमात्मा की बात करते हो। तो अगर मान लिया जाए थोड़ी देर चित के बाहर ही परमात्मा है, तो चित का ही तो पर्दा हुआ आत्मा और परमात्मा के बीच में। अगर चित का पर्दा हट जाता है, तो फिर आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर रहेगा? तो इसलिए अब ये जो विज्ञान की यहां प्रादुर्भाव हो रहा है, ये तो आत्मा परमात्मा का वह एक ही भाव की बात है। अब ये जो यहां विज्ञान पैदा होता है, ये मनन से और निरिध्यासन से होता है और साक्षात्कार से होता है। आप लोगों में एक कमी है, जितना सुन जाते हो घर में जाकर के उसको विचारते नहीं। आज ये विषय कहा था, उस पर तर्क वितर्क उठाओ, शंका समाधान उठाओ, जैसे किसी ने पुस्तक पढ़ी छोड़ दी, ये भी जैसे उपदेश सुना छोड़ दिया, भाई ये खत्म हो गया था। और नहीं, एक दिन का उपदेश ही मनुष्य के लिए तो कल्याण है, रोज सुनते सुनते जाते कुछ असर ही नहीं होता, मालूम होता ठहरता ही नहीं, बार ओवर फ्लो होता चला जाता है। टेप ले लेके बैठे हैं, अब ये क्या नाम कल इनका टेप नहीं लगा, तड़फड़ा उठे, इन्होंने कह दिया कि बस ऐसा व्याख्यान तो कभी ने सुना था, न कभी सुनेंगे, न है न कभी होगा, अभी आज टेप देगा नहीं। इसमें तो ये डालते नहीं इस टेप, अरे ये इस टेप में नहीं ठहरता तो इसमें क्या, ये तो कभी फेल हो गया था, तो इस टेप में, ये बड़ा भारी टेप है, इसमें ठहरा, मैं कौन से टेप लगा के बैठता हूं, तो इस टेप में तो तुम ठहराते नहीं, और इन टेपों में ठहराते हो, वाणी तो है, वाणी रहेगी, एक टेप से भी काम भाई ऐसी वाणी थी तो क्या पुस्तक जैसा टेप हो गया ऐसे पुस्तक होगी। हाँ ये है कि भी पुस्तक ऐसी आवाज नहीं सुनाएगी जैसे इस वक्त बोल रहा हूँ। सो कहने का तात्पर्य यही है कि जो सुना करो उपदेश उसको मनन किया करो, चिंतन किया करो, उस पर तर्क वितर्क उठाया करो, तुम्हारी बुद्धि की कसौटी पर वो विज्ञान उतरेगा तो ये प्रखर बनेगी। मैं भी तो ऐसे करता रहता हूँ, एक बात को ले लेता हूँ और उस पर मनन चिंतन आदि करता रहता हूँ। तो मेरी तरह तुम करो तो शायद तुम्हें सुनने की भी जरूरत ना रहे, जैसे मुझे किसी से सुनने की जरूरत नहीं रही, मैं किसी के पास सीखने पढ़ने नहीं जाता, उसकी जरूरत नहीं रही। तो अगर तुम थोड़े से उपदेश को लेकर के उस पर मनन निधिध्यासन करो तो फिर आपको भी मेरे वचनों के सुनने की आवश्यकता, तुम्हारे अंतःकरण से ये विज्ञान अपने आप ही सुपूर्ण होने लगेगा, अपने आप ही निकलने लगेगा। जिस बात को पकड़ के चिंतन करोगे वो अपने स्वरूप को दिखा दिया करेगी। तो ये इतने लंबे चौड़े तुम्हें लेकर मैं तो सबको मूर्ख मंडल समझे बैठा हूं। अब ना बेकार बैठ जाऊंगा ये कहेंगे कुछ काम नहीं करता, अरे विज्ञान तो एक दो दिन का ही बतेरा होता है। अरे करना हो तो ये जन्म भी ऐसा बीत गया, पहले भी आप तो बहुत जन्म मान रहे, वो भी हजारों ऐसे बीत कर ये भी बीत जाएगा, बस ऐसे कैसे कोरे पे कोरे आगे चले जाओगे। तो उपदेश तो एक दो दिन का बतेरा होता है, अपने मस्तिष्क से काम लिया जाए। अपने मस्तिष्क से काम नहीं लेते, इससे मनन निधिध्यासन नहीं करते, नहीं ये तो बहुत मार्ग खोल देता, बहुत रास्ता खोल देता, कोई उलझन है सब उलझन ही खत्म कर देता अपना मस्तिष्क। मेरे मस्तिष्क से, मेरे विचारों से, मेरे प्रभाव से ये बात तुम्हारी नहीं बनेगी, तुम्हारे प्रभाव से बनेगी। जब तक तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार की निर्णायक नहीं होगी, अब तो मेरे निर्णय सुन रहे हो ना, जैसे किसी पुस्तक के, ये भी पुस्तक ही बोल रहा हूँ, जैसे किसी पुस्तक के निर्णय सुन लिए वो वैसे ही चले जाते हैं, वैसे ही चले जाते हैं। एक निर्णय को लेकर फिर उस पर तर्क वितर्क उठाओ, उसका अनुसंधान करो, उसका पूर्वापर देखो, उसको अपने आप विकास करो, अपने आप चिंतन करो, स्वयं कोई चीज लेके बैठ दिया करो, बेकार संस्कारों का निरोध करते, संस्कार भी नहीं रुकते, प्रयत्न जो जारी रहता वो भी एक प्रकार की वृत्ति तो होती है। मैं ये बैठ कर देख रहा हूँ कोई संस्कार ना आ जाए तो सावधान रहता हूँ, उसके इंतजार में संस्कार की कोई विचार ना आ जाए, तो ये भी प्रयत्न, ये भी तो वृत्ति है एक प्रकार की। अगर किसी अच्छे पॉइंट को लेकर के उस पर चिंतन करो, आत्मा पर चिंतन करो, किसी बाहर की भौतिक पदार्थ पर चिंतन करो, मन के ऊपर चिंतन करो, मन का क्या स्वरूप है उसको देखने की खोज में उसके पीछे पड़े रहो जब तक वो सामने ना आ जाए, समझने ना आ जाए। तो ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि बन जाए तो थोड़ा सा विज्ञान भी बहुत होगा। सो ये विज्ञान की परंपरा जो चलती है कागजों में भी इतनी नहीं चलती, मस्तिष्कों में चलती है। अगर मस्तिष्क पढ़ने वाले ना हो तो पुस्तकें वेद पढ़े, वेद पढ़ते नहीं आजकल, कागजों पर तो लिखे पड़े हैं, तो ये मस्तिष्क ग्रहण करने वाले तो ये मस्तिष्क हैं। तो मस्तिष्कों का विकास, देखो भौतिक विज्ञानवादी भी समाधि जैसी लगा करके अनुसंधान करते हैं, पूरे योगी हैं, भले भौतिक विज्ञानवादी हैं पूरे योगी हैं, और तुम अध्यात्मवादी योगी नहीं बन पाते, उनकी तरह भी नहीं बन पाते। वो जिस बात को, जिस पदार्थ को लेते हैं पूरी उसकी खोज करके छोड़ते हैं, अगर कहीं वो आत्मा को ले लेंगे तो इसकी भी पूरी खोज कर देंगे। पर भौतिक विज्ञानवादी जो रिसर्च कर रहे हैं उनके समान अपनी बुद्धि बनाओ आकार, क्योंकि अब जैसे मन बुद्धि आदि इन पर भी तो चिंतन करना चाहिए, उन्होंने तो चिंतन करके देख कर छोड़ दिया, भाई मस्तिष्क के इस भाग में इतना देश है वहां ये संवेदन होते हैं स्मरणात्मक, और वहां ये कहते हैं कि अगर वहां तार लगा के दूसरी जगह रख दी जाए तो वहां भी संवेदन होने लगते हैं। तो एक स्थान ऐसा ढूंढ लिया उस पर, परंतु आगे अब ये जो संवेदन है इसका अपनी ही उपज है कि कहीं ऊपर से कोई प्रभाव पड़ा हुआ है, जो उस देश में इस प्रकार का संवेदन ज्ञान हो रहा है, क्या वो क्या उसी की उपज है, उस जड़ पदार्थ ही। ये लोग तो एक प्रकार से इस करके ये पंचभूत मिल करके ये एक प्रकार की चेतना सी बन गई है, इससे भिन्न कोई चेतना चीज नहीं है। हमारा अंतर इतना कि हम इससे भिन्न चेतना मानते हैं। जैसे इस के अंदर तुम इस पर पंचभूतों से उत्पन्न हुई चेतना यहाँ का संचालन कर रही है। ऐसे ये जो समष्टि पंचभूत हैं, इनके संघात से मिलकर के कहते हो भगवान रूपी चेतना भी समष्टि सी बनी हुई है, तो वो उसको भगवान नहीं कहते, या इसको आत्मा नहीं, इस प्रकार का जीवात्मा नहीं कहते। तो कहने का तात्पर्य ये है, आप अपनी बुद्धि से रोज मनन किया करो, एक एक विषय को लेकर के ध्यान में बैठा करो, अलग भी बैठा करो। ये तो हुआ ना, आज का मेरा विषय लेके बैठ जाओगे इसी में तुम्हारा, इसको भी नहीं पूरा करते। अगर उपदेश को ही लेकर के आज के या कल के उपदेश को लेकर उसको समाधि का विषय बना लिया जाए तो वो स्फुरण होकर के उसमें और विज्ञान की और विशेषता आ जाएगी। तो स्वयं जब तक अपनी बुद्धि को इस प्रकार की नहीं बनाओगे, तब तक इसमें ज्ञान का विज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होगा और आत्म दर्शन की योग्यता नहीं बनेगी। इसने ही बताना है आत्मा का भेद या अभेद, परमात्मा का भेद या अभेद, या अपने स्वरूप को मैं भी क्या हूं। अब ये आंखें वाखे तो ये मुंह अपने आप को तो नहीं बता रहा, शीशा लाओ, शीशा ही बताएगा ना। तो इसमें भी ऐसा स्थान है, वह आत्मा से भिन्न शीशा है, चित्त शीशा है, बुद्धि शीशी है। तो इन शीशों पर इसका आभास या प्रतिबिंब, प्रकृति में भी परमात्मा का आभास या प्रतिबिंब मानना पड़ेगा, आत्मा का भी आभास चित्त में मानना पड़ेगा। जब कोई वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ स्वरूप मानना पड़ेगा और उसके स्वरूप का आभास मानना पड़ेगा। जैसे हमारा स्वरूप है, शीशे पर उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो इसलिए लोग बिंबिंबी भाव बात बन जाती है। हाँ, जैसे घोड़े के सींग नहीं होते उसका आभास नहीं पड़ेगा, हाथी के सींग नहीं होते उसका आभास नहीं पड़ेगा। जिस पदार्थ का अभाव है उसका तो आभास नहीं पड़ेगा, परंतु जिस पदार्थ का भाव है उसका आभास पड़ेगा। इसलिए आत्मा का भी आभास चित्त पर पड़ेगा, परमात्मा का भी आभास चित्त पर पड़ेगा, परमात्मा का भी प्रतिबिंब चित्त पर पड़ेगा और आत्मा का भी प्रतिबिंब चित्त पर पड़ेगा। उस प्रतिबिंब को देख के कहोगे ये मेरा रूप है, शीशे पर मेरा आभास पड़ता है उसको मैं कहता हूँ ये मेरा काजल आंख नाक कान है। अभी आंखें नाक को भी नहीं दिखा रही है, फिर ये सबको दिखा देंगे। तो चित्त रूपी दर्पण पर तुम्हारे आत्मा का आभास मिलेगा या परमात्मा का आभास मिलेगा। तो उस चित्र रूपी दर्पण पर आभास को देखने की बात करो ना, अभ्यास में करना है। ध्यान की स्थिति में बाहर की बातों का तो चिंतन नहीं करना, इस ब्रेन से इसमें जो कुछ दिख है उसका चिंतन करना, जो कुछ इसमें नजर आए हड्डी मांस पेशियां कुछ रक्त प्राण कोई आत्मा परमात्मा मन बुद्धि कोई लाइट कोई कुछ आए, इसमें सोचना, बाहर की बातों को नहीं सोचना, ये अभ्यास करना।